माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय भौतिक विभागों की, यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। शिक्षार्थियों, जब भी हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो हम कहते हैं कि यह विश्व के विशाल राष्ट्रों में से एक है। फिर हम बात करते हैं कि यह कैसे एशिया में स्थित है, या हम बात करते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम कई बार कहते हैं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अमुक है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हम उसकी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति से तात्पर्य है कि भारत की जो भौतिक सीमाएं हैं उनका विस्तार कितना है, कहां पर है, आदि चीजों से। और जब भी हम स्थिति की बात करते हैं तो ये दो रूपों में होती है, एक होती है सापेक्ष स्थिति और एक होती है निरपेक्ष स्थिति।
जी,
निरपेक्ष स्थिति को सामान्यतः हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 8 अंश 4 डिग्री से 97 अंश 6 डिग्री तक, 8 अंश 4 डिग्री से 37 अंश 6 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी अक्षांशी जो इसका अक्षांशी विस्तार इन दोनों रेखाओं के मध्य। फिर आती है सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति जो है वो हमेशा किसी के संदर्भ में होती है, यानी हम कहते हैं कि भारत एशिया में स्थित है, फिर हम कहते हैं कि ये दक्षिण एशियाई भाग में, या हम कहते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में, यानी किसी न किसी दिशा में या पास में है। तो इस तरह से जब हम तुलनात्मक रूप से इसकी स्थिति को दर्शाते हैं तो यह सापेक्ष स्थिति होती है। अब हमने बात की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो आज शिक्षार्थी आप जानती होंगी जो अक्षांश देश रेखाएं हैं क्योंकि वो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये धरती पर कोई वास्तविक रूप से खिंची हुई रेखाएं नहीं है, वरन स्थिति के अनुसार इनको हम काल्पनिक रूप से हम अभी मानते हैं और इनको मानचित्र या ग्लोब में दर्शाते हैं। उसी तरह देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड है, जो कि आप देखें तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये खिंची होती है। तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ही भारत की जो या किसी भी स्थान की जो निरपेक्ष है उसे दर्शाती। अगर हम भारत की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि इसका विस्तार 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश में है और इसका देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। तो ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें कि क्या इसका आकार है, तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर में है और जो पूर्व से पश्चिम के विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारत एक विशाल राष्ट्र है और एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम ये भी देखें कि क्या विश्व की तुलना में इसकी स्थिति क्या है, तो देखते हैं कि विश्व के कुल भूभाग का 2.42% जो है वो भारत के पास है। तो इस तरह से इसकी विशालता और यही विशालता इसे विविधता भी प्रदान करती है, क्योंकि हम अलग अलग भौतिक स्वरूपों में हैं, अलग अलग जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं और इस सब मिलकर भारत को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। शिक्षार्थी, ये हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति और उसके अक्षांशी देशांतरी विस्तार। इसी के साथ ही, क्योंकि एक विशाल देश के लिए जब हम कोई समय निर्धारित करते हैं तो एक हम मानक मध्यान रेखा अपनाते हैं। मानक मध्यान रेखा का एक तरह से आप ये मान लीजिए कि भारत के एकदम बीच का जो भाग है वहां पर जो समय है उसी को संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक मानक समय मान लिया जाता है और 82 अंक 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, उसे हमारे भारत का पहले मेरिडियन ऑफ कहा जाता है या मानक मध्यान रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही एक और विशेष बात भारत के साथ में है कि आप देखेंगे कि कैसे जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी भारत के लगभग 20-20 से गुजरती है, यानी वो 23-30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है और भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो ये तो बात थी शिक्षा को भारत की निरपेक्ष स्थिति। अगर हम भारत के सापेक्ष स्थिति की बात करें तो आपने मानचित्र भारत का अवश्य देखा होगा और उसके साथ ही आपने उसमें देखा होगा कैसे भारत के चारों ओर किस प्रकार के भूरूप हैं और कैसे और कौन से देश हैं जो इसे घेरे हुए हैं। तो अगर हम बात करें भारत के पश्चिम की ओर तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि चीन भूटान और नेपाल का विस्तार है और जबकि पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। ये इन देशों की जो सीमाएं हैं वो भौतिक सीमाएं यानी भौतिक भूभाग जो है वो जुड़े हुए हैं, जबकि भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर का विस्तार है और उस क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि श्रीलंका और मालदीव स्थित है हिंद महासागर में और भारत की दक्षिण की ओर इनका विस्तार है। भारत राष्ट्र का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जो कि निकोबार आइलैंड में है और इसका जो है भौतिक विस्तार वो 6.4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, जबकि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी। शिक्षार्थ को इस तरह से आप देखेंगे कैसे भारत एशिया महाद्वीप में स्थित होने के साथ साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति के साथ में है। आप देखेंगे कि कैसे इसके दक्षिण की ओर हिंद महासागर अवस्थित है, उत्तरी दिशा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ये भौतिक रूप से एशिया के दूसरे राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। भारत की जो उत्तरतम सीमा है वहां पर आप देखेंगे कि कैसे हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है और दक्षिण की ओर तटीय क्षेत्र। इस प्रकार से भारत में भौतिक विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसका कारण है कि इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उस स्थिति की वजह से भी यहाँ पर भौतिक स्वरूप में विभिन्नता के साथ साथ जो जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करें हम किसी भी राष्ट्र की जब स्थिति की बात होती है तो उसकी महत्वपूर्ण या उसकी विशेषताओं की बात क्या भारत का जो लोकेशनल सिग्निफिकेंस है यानी जो उसकी ऐतिहासिक विशेषता या सामरिक विशेषता है वो क्या है। आप देखेंगे कि कैसे भारत दक्षिण एशिया का सबसे विशालतम राष्ट्र है, साथ ही इसकी सिंध महासागर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान देती है उसका। आप देखेंगे कि कैसे जो व्यापार मार्ग हैं उन पर भी भारत की स्थिति है। यही कारण रहा है कि प्राचीन समय में भी भारत दूसरे देशों के लिए एक रुचि का विषय रहा क्योंकि वो भारत में व्यापार के लिए या भारत की स्थिति की वजह से अन्य देशों के साथ संपर्क बनाने के लिए भी वो भारत की ओर आकर्षित। पूर्व काल में बहुत सारे ऐसे जैसे हमने कहा कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में विशाल पर्वत माला स्थित है और भौतिक रूप से उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन वहां पर बहुत सारे दर्रे हैं, वो दर्रे ही दूसरे देशों की ओर जाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैसे सिक्किम में नाथुला, हिमाचल प्रदेश में शिक्किला और जम्मू में जम्मू कश्मीर में जोजिला और बुर्जी जो पासेस हैं वो स्थित है। ये शुरू से आप प्रारंभ से देखें या प्राचीन काल से भी देखें तो यही दर्रे आवागमन का माध्यम रहे। तो इस प्रकार से भौतिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन दर्रों के कारण भारत दूसरे देशों के संपर्क में रहा। इसके अलावा क्योंकि एक विशाल तटवर्ती क्षेत्र भारत के पास है और प्राचीन काल से बहुत सारे बंदरगाह इन तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित रहे और विश्व के दूसरे देशों के साथ मार्ग का प्रयोग करने के लिए इनका प्रयोग किया गया, चाहे वो यूरोपियन देश रहे हों या अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हों, इन जल मार्गों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका भारत के व्यापार के संबंध में, साथ ही सांस्कृतिक विस्तार और विचारों के आदान प्रदान में इन्होंने अपनाई क्या की। साथ ही जो बात हो रही थी भारत की स्थिति, भारत की विस्तार की और किस प्रकार भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण बनाती है। अब अगर हम बात करें भारत के प्रदेशों की और केंद्र शासित क्षेत्रों की, वर्तमान में भारत में 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मिलकर ही भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आप देखें तो कैसे विश्व के संदर्भ में हमने बात की कि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, साथ ही जनसंख्या के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र। अगर भारत की भूमि सीमा की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो तटवर्ती सीमा है, तटीय सीमा है, वो 6,100 किलोमीटर है। एक इतनी विशाल तटरेखा व्यापार के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण। इसके साथ ही भारत के भूमि क्षेत्र का विस्तार 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत को एक विशाल क्षेत्र उपलब्ध कराता है, इसके लिए व्यापार के लिए, मानवीय बसाहट के लिए, परिवहन के साधनों के लिए एक बृहद आधार देता है। जैसे हमने बात की कि भारत विशाल राष्ट्र है और लगभग विश्व के 2.42% भूक्षेत्र को अपने में समेटे हुए, यह विशालता ही भारत को एक विशिष्टता देती है। साथ ही भारत की अक्षांशीय और देशांतरी जो स्थिति है और इसके जो भौतिक स्वरूप है, वो भी यहाँ पर एक विविधता की स्थिति को निर्मित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर रहे थे भारत के प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की। जैसे हमने बात की कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी राजधानी दिल्ली है, या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोलते हैं। शिक्षार्थियों, हम बात कर रहे थे अभी तक भारत की स्थिति, विस्तार और उसकी राज्यों और प्रदेशों की। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं भारत के भौतिक विभागों। शिक्षार्थियों, जब भी आप कहीं जाते हैं, आप चाहे शहरी क्षेत्र में रह रहे हों, शहरों से कभी आपने गांव की ओर गए हों, या कभी आप घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में गए हों, या आप गांव में रह रहे हैं और आपने आसपास के अपने भौतिक परिवेश को देखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारत में विविधताएं भौतिक रूप में पाई जाती है और ये विविधता देखने के लिए आपको दूर नहीं जाना है, या आपके आसपास दिखती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र में हो, हो सकता है मैदानी क्षेत्र में हो या पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन कभी न कभी दूसरे भौतिक रूपों को भी आपने देखा है। भारत के विशाल मैदान में जब आप रहते हैं तो देखते हैं कि कैसे परिवहन के साधन बड़े सुगम हैं, रेल मार्गों का विकास है, सड़कों के जाल फैलाया हुआ है, उद्योग और कारखाने स्थित है। लेकिन जब आप पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो आप एक वहां पर अलग ही भूरूप देखते हैं, जैसे कि वहां पर यात्रा करना पहले काफी कठिन था, आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पहुंच मार्ग से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि वो भौतिक रूप से वहां पर सकते हैं। तो ये जो भौतिक विविधता है वो भारत की विविधता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तटीय क्षेत्र भी है, समुद्री द्वीप भी है, मरुस्थल भी है। विश्व का ऐसा कौन सा भौतिक रूप है जो भारत में नहीं है? एक और यहाँ पर एकदम बीच क्षेत्र है जो कि हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, दूसरी तरह यहाँ पर गर्म मरुस्थल भी। तो इस तरह से लगभग सभी प्रकार के जो रूप हैं या भौतिक जलवायविक रूप हैं वो आप भारत से देखते हो तो आपको मिलेगा। और ये मैं बार बार डाइवर्सिटी की बात करता हूँ, तो वो डाइवर्सिटी जहाँ पर एक आप कहेंगे कि सांस्कृतिक विविधता है, वहीं पर उसके साथ में आप भौतिक रूप की विविधता भी पाएंगे, यानी जिसको हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, वो भी आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम भारत के अलग अलग भौतिक रूपों की बात करें।
जी
अगर हम भारत को भौतिक भागों में बांटना चाहें तो हम मुख्य रूप से छह भौतिक रूपों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी विशाल पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, फिर आता है प्रादेशिक पठार, के बाद है भारतीय मरुस्थल, भारतीय तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। आइए हम क्रमशः हम इसके बारे में बात करें और विस्तार से हम देखें कि कैसे भारत की अलग अलग भौतिक रूप जो भारत के लिए उपयोगी है और वो कैसे भारत को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारत के उत्तरी विशाल पर्वतों की। आप अगर आपने मानचित्र को देखा हो तो आप देखेंगे कि कैसे इन उत्तरी विशाल पर्वतों का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है और भारत की जो उत्तरी सीमा है वो उसको पूरी तरह से घेरे हुए है। कहा भी जाता था कि जो हिमालय है वो भारत के लिए एक दीवार का काम करता है, तो उसे यहाँ की जलवायु को भी प्रभावित करता है, साथ ही हमें एक सुरक्षा की ढाल भी हमारे लिए बनता है। अब अगर इस उत्तरी विशाल पर्वत को तो हम विभाजित करें, बहुत ही विशाल श्रृंखला है, तो हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा है हिमालय पारिदीप की पर्वत श्रेणियां और तीसरा है पूर्वांचल, पूर्वाचल या पूर्वी पहाड़ियां। आइए सबसे पहले हम बात करें हिमालय पर्वत। शिक्षार्थियों, अगर आप देखेंगे तो हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की या देखें एक धनुषाकार आकार में विस्तृत है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक हिमालय का विस्तार है। इसकी चौड़ाई अलग अलग है। अगर आप देखें तो जहाँ पूर्व में ये लगभग 150 किलोमीटर की चौड़ाई पर विस्तृत है, तो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका विस्तार है। साथ ही हिमालय पर्वत का जो इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अगर हम इस हिमालय पर्वत को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जो तीन समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल और तीसरी है शिवालय। हिमाचल, जिसे कि हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, सबसे उत्तर में स्थित है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंची है, वो इस हिमाद्री में ही स्थित है। शिक्षार्थियों, अगर हम इसके निर्मित होने की बात करें तो ये लगभग क्लोट ग्रेनाइट शैलों से बना हुआ है और इसमें षड्यंत्रित और अवसादी शैलें भी पाई जाती हैं। जैसे हमने बात की कि हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं वो लगभग हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसके साथ ही इसमें करीब 100 से भी ऐसी ज्यादा चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। हमने बात की जैसे संसार की सबसे ऊंची चोटी इसमें स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कंचनजंगा, इसके अलावा मकालू, धौलागिर और अन्नपूर्णा भी इसी में ही स्थित है, हिमाद्री में ही इसकी अवस्थित है। इसकी एक और विशेषता है शिक्षार्थियों, जो कि लगभग वर्ष भर ये हिमाच्छादित रहती। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे माउंटेन पासेस यानी पर्वतीय दर्रे रहे हैं जो आवागमन का साधन है। आज भी आप देखिए तो बारला, लाचिला, चिपकीला, नाथुला, जोजिला, बोमदिला जैसे दर्रे हैं जो कि हिमाद्री में स्थित है और यह आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रास्तों का काम करते हैं। इसके बाद आती है बात हिमाचल, जिसे हम हिमालय कहते हैं। लगभग हिमालय लगभग 60 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर के आसपास है इसकी, एक हम कहें तो 1,000 से 4,700 मीटर तक ऊंचाई है इसकी। कुछ पर्वतीय शिखर हैं जो लगभग 5,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे, ये काफी उबड़ खाबड़ पर्वत श्रेणी है और इनका निर्माण कायांतर चरणों की वजह से प्रमुखता से हुआ है। इसकी एक और विशेषता है कि इस श्रेणी के पूर्वी भाग में मंद ढाल वाले घने वन है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में एकदम तीव्र ढाल वहां पर पाया जाता है और वनस्पति विहीन क्षेत्र भी है, जबकि उत्तरी ढाल वाले हिस्सों में सघन वनस्पति पाई जाती है। कश्मीर इसका एक और विशेषता शिक्षार्थियों की इसमें ना क्षेत्रवार विविधता पाई जाती है इसके नामों में। कश्मीर में इस श्रेणी को पीरबंजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में इसको भलाधर के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसी हिमाचल पर्वत श्रेणी में कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां भी हैं। बहुत सारे पर्वतीय नगर जो कि पर्यटन के केंद्र हैं यहीं पर पाए जाते हैं, चाहे शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय शहर हिमाचल या लघु हिमालय में ही स्थित। हिमालय पर्वत के जो तीसरा हिस्सा है वो शिवालय का बाघिमाला कहा जाता है, यही हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है और यह सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भी है। अगर हम हिमालय पर्वत की बाकी दो श्रेणियों की तुलना करें तो यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई पाई जाती है। हिमाचल और हिमाचल से निकलने वाली जो नदियां हैं वहां पर वो इस क्षेत्र में बालू मिट्टी आदि जैसे चीजों की भी बहाकर लाती है और इन्हें जमा करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवालिक जो है वो सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है हिमालय की। इसमें भी क्षेत्रवार भिन्नता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जम्मू हिल्स का क्षेत्र भी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक और विशेषता है कि यहाँ पर घाटियां पाई जाती है जिन्हें कि हम दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटलिदून आदि, तो ये शिवालिक के ही क्षेत्रीय विस्तार में इनकी स्थिति। अब हम आइए बात करते हैं हिमालय पार की पर्वत श्रेणी। हिमालय की पार की पर्वत श्रेणियाँ मुख्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं। इनमें जांसकर प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो कि लगभग हिमाद्री के समानांतर स्थित है। इसके अलावा जांसकर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से ही स्थित जो नदी पाई है, इसके संदर्भ में एक ऐसा माना जाता है कई बार ये हिमाचल का विस्तार है तो थोड़ा सा इसमें मतभेदता है, लेकिन इसे हम एक अलग पर्वत श्रेणी के रूप में हम मानते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी में एक और उच्चतम पर्वत चोटी है जिसे कि केटू माउंट केटू कहा जाता है और एवरेस्ट के बाद यह दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। जम्मू कश्मीर में फैली पर्वत श्रेणियों के अलावा लद्दाख के क्षेत्र में लगभग हम एक पठारी क्षेत्र का भी विस्तार पाते हैं जिसे कि हम लद्दाख का पठार कहते हैं, ये बहुत ऊंचा शुष्क और दुर्गम से। उत्तरी विशाल पर्वतों का जो तीसरा भाग है उसे हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल का विस्तार ब्रह्मपुत्र महागढ़ के पार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र से 5,000 से 3,000 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में इन पहाड़ियों का विस्तार हम पाते हैं। मिश्मी, पटकाई, गुम, नागा, मणिपुरी और मिजो तथा त्रिपुरा में इन पहाड़ियों का विस्तार है। मेघालय का पठार भी पूर्वांचल पर्वतीय क्षेत्र का ही है। इसके अलावा यहाँ गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो शिक्षार्थियों ये तो बात थी उत्तरी विशाल पर्वत की। अब जो भारत का दूसरा प्रमुख भू क्षेत्र है वो है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हम पाते हैं, और हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये फैला हुआ है। इस मैदान का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है।
जी
इसकी जो सबसे प्रमुख तो विशेषता है, यह बहुत ही उपजाऊ है। इसका निर्माण अवसादों से हुआ है, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से, और इस प्रकार ये बहुत ही उपजाऊ है। यही कारण रहा है कि प्राचीन काल से ही ये मैदान सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ पर मानवीय वसाहत रही है और सभ्यता और संस्कृति ने अपना विस्तार पाया है। हिमालय और दक्षिणी पठारों से भी, यानी प्राचीन पठारों से भी प्रवाहित होने वाली नदियों ने यहाँ अवसादों का निर्माण किया है। इसकी जो गहराई वो लगभग 2000 से 3000 मीटर तक मानी जाती है। आप देख सकते हैं गहराई पे यहाँ अवसाद है, और प्रति वर्ष नदियां इसकी अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान अवसादों का निक्षेपण आज भी करती है। ये एकदम सपाट और समतल मैदान पाया जाता है, और अगर हम इसका विस्तार देखें तो यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में, असम राज्य में इसका विस्तार हम पाते हैं। जैसा हमने कहा कि एक उपजाऊ मैदान है, इसके लिए भारत में इसे हम एक तरह से फूड बाउल या अनाज का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में अनाजों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। साथियों, अगर हम इसके विभाजन, इसको हम बांटे, जैसे हमने अभी उत्तरी विशाल पर्वत को हमने 3 भागों में बांटा और फिर उनको भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया, उसी तरह से ही विशाल पर्वत को भी, विशाल मैदान को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 भाग हैं, पश्चिमी मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पश्चिमी मैदान की बात करें तो पश्चिमी मैदान में राजस्थान का मरुस्थली भाग, अरावली पर्वतश्रेणी का पश्चिमी भागा क्षेत्र भी स्थित है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कैसे कुछ भाग रेतीला है, जहां पर माना जाता है कि प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी जो कि अदृश्य है वो प्रवाहित होती थी, कालांतर में धीरे धीरे रेतीले भागों में बदल गया। लेकिन ये भाग केवल रेतीला ही नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे बीकानेर का उपजाऊ क्षेत्र भी इसमें स्थित है। पश्चिमी मैदान में लूनी एक प्रमुख नदी है जो कि आगे जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। साथ ही सांभर तो नामक खारे पानी की झील भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा सतलज और ब्यास और रावी जैसी नदियां भी यहाँ पर दोआब का निर्माण करती है, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद आती है जो दूसरा भाग है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की जो स्थिति है वो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को सम्मिलित करती है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र सभ्यता का एक केंद्र रहा है। आप देखेंगे आज भी कैसे अपनी उपजाऊपन की वजह से और कैसे संचार या परिवहन साधनों के विकास की वजह से मैदान समतल है, यहाँ पर इनका विकास कर पाना, हम आधारभूत संरचना बोलते हैं, उनका निर्माण कर पाना ज्यादा आसान है। इसी वजह से यहाँ पर घनी बसावट भी पाई जाती है। हमने बात की कैसे इस क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र प्रमुख है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ इसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के नीचे पड़ते हुए का निर्माण हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, साथ ही असम, पश्चिम बंगाल, बिहार आज के भूभाग क्षेत्र में इस भाग में सम्मिलित है। शिक्षार्थियों, जब हम मैदान की बात करते हैं तो उस पर हम कई बार कहते हैं कि यहाँ पर यह क्षेत्र दुआब है, यह क्षेत्र खादर है या बांगर है, तो इन शब्दों पे भी अर्थ है। दुआब का मतलब है कि दो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो अवसादों का क्षेत्र होता है वो दोआब है, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें प्रति वर्ष उपजाऊ जो निक्षेपण है वो कर दिया जाता है। इसके अलावा खादर की बात करते हैं, खादर वो क्षेत्र है जो कि नदियों के अवसादों से प्रतिवर्ष निक्षेपित होता है, यानी एक नवीन अवसाद वहां पर रहता है, वो खादर है। सागर वो क्षेत्र है जो कि जिनमें काफी पहले अवसादों का निक्षेपण हुआ है पर अब नहीं हो रहा है, यानी वो नदी से दूर हो गए। ठीक है, तो ये तो बात थी उत्तरी विशाल पर्वत मैदान पर। अब हम बात करते हैं भारत की विशाल पठार। भारत के विशाल पठार जो है, जैसे हम प्रायद्वीपी पठार भी कहते हैं, वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्य सम्मिलित है। आप देख सकते हैं कैसे, अगर आपकी जो पाठ सामग्री है उसमें अगर आप मानचित्र को देखें 9.6 मानचित्र, तो आप पाएंगे कि कैसे भारत के विशाल क्षेत्र यानी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के विशाल क्षेत्र में हम इस प्रायद्वीपी पठार का विस्तार पाते हैं। इसको भी हमने दो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो विस्तार है वो नर्मदा नदी के उत्तर से लेकर उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है, पश्चिम में इसकी अरावली स्थित है जो कि गुजरात और राजस्थान में विस्तृत है, और ये आगे बढ़ते हुए चंबल, विंध्याचल श्रेणी आज भी इस मध्यवर्ती उच्च भूमि में सम्मिलित है। जब हम इसको हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसमें बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और आगे छोटा नाग का पठार इसमें सम्मिलित है। इस तरह से इसका हम विस्तार देखते हैं कि लगभग भारत के केंद्रीय क्षेत्र में कहां विस्तार पाते हैं, और कई बार इसी वजह से इसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी की ओर विंध्याचल श्रेणी में आप एकदम खड़े कगार का भी विस्तार इस मध्यवर्ती भूमि में पाते हैं, जिसे हम देखते हैं कि एक भ्रंश या रिक्त घाट, नर्मदा नदी एक रिक्त घाटी में या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और ये मध्यवर्ती भूमि की दक्षिणी सीमा भी बनाती है। इसके बाद बात आती है प्रायद्वीपी पठार की, जिसे कि दक्षिण का पठार भी कहते हैं। दक्षिण पठार का विस्तार हम पाते हैं कि त्रिभुज के रूप में है, जिसकी एक भुजा कन्याकुमारी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक है, दूसरी भुजा जो है वो पूर्वी घाट से होती हुई गुजरती है, सतपुरा श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल और राजमहल की श्रेणी इसका सीमा बनाती है, और इसका उत्तर में जो नर्मदा की प्रवाह है वो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। इस प्रकार इसके त्रिभुज के रूप में हम इसका विस्तार पाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो उच्चतम भूभाग है उसे हम अनायमुदी शिखर बोलते हैं, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है और दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके अलावा अनायमलाई, कार्डेमम और पल्ली पहाड़ियां यहाँ पर है। पल्ली पहाड़ियों में कोडाईकनाल एक बहुत ही सुरम्य पर्वतीय नगर है और एक पर्यटन का केंद्र है। इसके अलावा बहुत से अन्य रमणीय स्थान यहाँ पर आप पाएंगे। शिक्षार्थियों, प्रायद्वीपी पठार की जो हम औसत ऊंचाई जो हम पाते हैं वो लगभग 500 से 1000 मीटर के आसपास, और इसके साथ ही इसमें हम एक और विशेषता पाते हैं कि पर्वतीय पठार के दोनों क्षेत्र में पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का विस्तार है। जिसे हम पूर्वी घाट की जब हम बात करें तो पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी क्षेत्र में फैले पहले पूर्वाद श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा पर स्थित नीलगिरी पर सह्याद्री पर्वत से मिल जाती है। नीलगिरी में ही आप उदक मंडलम जैसा पर्वतीय शहर है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो इसे कई क्षेत्रों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में फैला तेलंगाना का पठार भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा नागपुर पठार का भी विस्तार हम इसके अंतर्गत ही मानते हैं। और नागपुर पठार बहने वाली दामोदर नदी की घाटी भी एक आप देखेंगे कैसे एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। इसके बाद बात आती है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो महानदी वैली से लेकर नीलगिरी वैली तक है। महेंद्रगिरी एक इसका प्रमुख ऊंचा क्षेत्र है। इसके अलावा नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में, कुलेमलाई, पचीमलाई जैसे प्रमुख अन्य प्रवेश चोटियां हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रकार से शिक्षार्थियों ये तो बात थी पूर्वी और पश्चिमी घाटों की। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के जैसे दुर्भाग्य जैसा कार्य करते हैं। आप देखेंगे कैसे इसकी पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है और पूर्वी क्षेत्र में आता है जो कि जलवायु प्रभाव भी डालता है। शिक्षार्थी तो बात कर रहे थे हम राजनीति पठार की। इसके बाद जो चौथा भाग है वो भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। और इसका विस्तार भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर अरावली पहाड़ी तक है, जैसे हमने कहा कि थार मरुस्थल भी पाया जाता है कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात और राजस्थान राज्यों में है। ये एक शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो भी 150 मिलीमीटर वार्षिक से भी कम पाई जाती है। वनस्पतियाँ मुख्यतः शुष्क रूप से कटीली और झाड़ीदार होती है। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है जो कि आगे कच्छ के रन में मिलती है। वर्षा की कमी की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कैसे वनस्पतियों की भी कमी पाई जाती है, साथ ही जो वन्य जीवन है वो भी बहुत सीमित है। तो इस तरह से भारत की पश्चिमी सीमा पर हम थार मरुस्थल का साथ पाते हैं। जैसे हम जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो जो प्रमुख पशु हमारे नजर में आता है वो होता है ऊंट, क्योंकि यह शुष्क मौसम को सह पाता है। शिक्षार्थियों अगर हम मरुस्थल के बाद बात करें वो तो बात आती है भारत की तटीय मैदान। अब तटीय मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है। यह है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार करने का कुमारी से लेकर पश्चिमी बंगाल तक है और ये बंगाल की खाड़ी से मिलकर तटीय सीमा बनाते हैं। सिल्का और पुलिकट यहाँ पर दो बड़े महत्वपूर्ण। दूसरा है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर अरब सागर के समानांतर गुजरात तक है। बहुत सारी बंदरगाह और बड़े शहर इस तटवर्ती सीमा पर स्थित है। मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है जो कि पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ये तटवर्ती क्षेत्र एक और जहाँ गाँव घूम के लिए प्रख्यात है, तो बहुत सारी कृषि क्रियाएं भी यहाँ पर की जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे बंदरगाह भी इन तटवर्ती शहरों में स्थित है जो भारत के लिए एक व्यापारिक मार्ग का कार्य करते हैं और भारत की आयात निर्यात में इनकी महत्वपूर्ण। शिक्षार्थियों ये तो बात थी तटीय मैदानों की। इसके बाद हम आते हैं भारतीय द्वीप की। भारतीय द्वीप जो है वो मुख्य दो रूपों में विस्तृत है। पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। बंगाल खाड़ी में ही भारत का जो एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो स्थित है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह के अंतर्गत है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गम की वजह से हुआ है। जबकि अरब सागर में जो द्वीप है वो उनका निर्माण कोरल की वजह से हुआ है। साथ ही ये तो बात थी भारत के भौतिक भूभागों की। अब बात से भूभागों की अब हम बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन या हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र में जो प्रमुखता है यह प्रमुख विशेषता है वो ये कि सदा नीरा है, यानी यहाँ पर हमेशा प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और उनमें वर्ष भर पानी आता है। लेकिन यह अवसादों के निक्षेपण की वजह से भी ये इनकी विशेषता, यानी इनमें अवसादों का निक्षेपण भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें हिमालयन महासंत की, तो जो तो प्रमुख नदियां हैं वो हैं सिंधु, चिनाब, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां। यानी अगर हम हिमालय महासंत को भी तीन नदी तंत्र में बांट सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो प्रायद्वीपीय प्रवाह है या प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र है, वहां पर भी हम देखें तो जो प्रमुख नदियां हैं वो है गोदावरी,
जी
कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और महानदी। तो इस प्रकार से ये हम दो नदी तंत्र भारत में पाते हैं। शिक्षार्थियों, इस नदी तंत्र यानी भारतीय अपवाह की साथ साथ ही सबसे बड़ी समस्या है इन नदियों को स्वच्छ रखना। आप देख सकते हैं कैसे भारत में पेयजल यानी शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या है। साथ
जी
ही मानसून की वजह से जब जल की प्राप्ति होती है तो वो एक सीमित समय में होती है और वर्ष के कई महीने वर्षा की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो हम सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने नदी क्षेत्रों को, हम अपने नदियों को, तालाबों को स्वच्छ रखें। जो भी हमारे जल के स्रोत है उनको स्वच्छ रखें, उनको प्रदूषित ना करें। प्रदूषण कई बार आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी होता है और कई बार हमारी जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, चाहे वो हम घर के प्रदूषण का प्रवाह कर रहे हो, नदी में अवशिष्टों का प्रवाह कर रहे हो, ये भी हमारे नदियों को, झीलों को, तालाबों को प्रभावित करते हैं।
जी जी
तो इस सब मिलकर ही हम अपने नदियों को, जलों को स्वच्छ। शिक्षार्थियों, आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। धन्यवाद।
जी